ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद् गीता यथा रूप तेन मूल रूपे अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 15 श्लोक संख्या 6 श्लोक यही पर दिखाया है न तत् भासयते सूर्यः न शशांकः न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम न तद्भासायते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम वा मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होते हैं और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तात्पर्य यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिससे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसे है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित है। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते थे से चमकीला आकाश बनता है जिससे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः या तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावन से निकलते हैं। इस तेज का एक अंश महत्त्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहते हैं। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहते हैं तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, क्यों ही वह मुक्त हो जाता है, तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानते, लेकिन अपनी मुक्तावस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाते हैं। वहाँ पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताते हैं। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाता चाहिए, उससे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई की इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से आध्यात्मिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होते हैं। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करने सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकते हैं। यदि कोई चाहे कि केसरीय वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा तो ऐसे संभव नहीं है। उससे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरत्व पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसे वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियाँ दूषित हो जाती है, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यहाँ परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोनो कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और छ ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। न तद्भासायते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गतवान् निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वा मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होते हैं और न अग्नि न या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। हरे कृष्णा, हम वाला विद्यानगर में हैं, गर्वी गुजरात में। कैसे लगते हैं गर्वी गुजरात में रहना? अच्छा है, अब सब माया में है। गुजरात तो गर्व ही नहीं। हम भगवान के धाम के बारे में चर्चा करते हैं नहीं। गर्वी गुजरात में क्या गौरव क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख आहार निद्रा भय मैथुन। शायद क्या राजस्थान या उड़ीसा से अच्छा है, शायद करीबन अच्छा है। तो ऐसा है, गुजरात से अमेरिका अच्छा है, प्रमाण है उसके बारे में। प्रमाण है कि बहुत सारे गुजराती लोग अमेरिका जाते हैं लेकिन बहुत कम अमेरिकन लोग गुजरात आते हैं। पूरा जगत दुखमय है। ऐसा नहीं है कि यदि आप गुजरात जाएंगे तो आप अमेरिका जाएंगे तो आपका कोई दुख नहीं होगा। दुखमय जगत है। ऐसे सोचना कि गुजरात से अमेरिका जाने से मैं सुखी होऊंगा, वो ही तो माया है। जाना चाहिए, यहाँ गर्व गुजरात में नहीं रहना चाहिए। और यदि हम चाहते यहाँ रहना तो वो भी संभव नहीं होगा, क्योंकि कितने दिन हम यहाँ रह सकते। और अभी तो प्रेमानंद से बात किया, प्रेमानंद 72 years old, और 72 years ऐसे ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे लगते। आप जितने भी रॉ फूड्स खाएंगे तो उसके पहले जाना पड़ेगा। आप तो खाली वो कच्चा अभी तक ऐसे कहते हैं नहीं, और मुझको प्रचार किया एक बार, वो खाली रॉ फूड्स लेना है, कच्चा ऐसे सब्जी अभी तक वैसे कहते हैं, उससे स्वास्थ्य अच्छे होते। लेकिन ऐसा अच्छी नहीं है कि आप और 72 साल उसी शरीर में रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर आप अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं भी विचार करता हूँ कि गुजरात अच्छा है। भगवान कृष्ण का विचार वो ही है नहीं। तो बचपन में वृंदावन में था, और अब बाद में तो विवाहित होने के लिए यहाँ है द्वारका। वो एक्चुअली गुजरात में नहीं, काठियावाड़ में है, नहीं अभी गुजरात राष्ट्र में है। तो वो भगवान कृष्ण का विचार है। और गुजरात अच्छा है ऐसे क्योंकि गुजरात में वो भगवत भक्ति भाव बहुत होते, इसलिए वास्तव में मुझे आध्यात्मिक उपदेश देना है और कुछ भौतिक उपदेश भी देता हूँ। तो अमेरिका मत जाओ, गुजरात में रहो, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति के लिए अमेरिका से गुजरात बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ के लोग आप जैसे लोग, तो आपके खून में कृष्ण भक्ति है, आपका भाग्य है, आपके पूर्व जन्म में आप कृष्ण भक्ति की, और अभी ऐसा वातावरण में जन्म लिया है जिससे आप कृष्ण भक्ति जो आपके लिए स्वाभाविक है, आप और भी कृष्ण भक्ति कर सकेगी। और करने से क्या होगा, यद्गत बनाने वर्तन थे तद धाम परम मम, भगवान का धाम जाना है। तो इसी प्रकार गुजरात गर्वी है, हाँ द्वारका है, डाकोर है, राधा गिरिधारी है, और लगभग हर एक शहर में कम से कम एक हवेली है नहीं, कृष्ण का वो मंदिर नहीं बोलते, हवेली बोलते, कृष्ण का घर, नंद बाबा का घर। तो वो आपका भाग्य है, परंतु केवल गुजरात में जन्म लेने से आपकी पूरी सिद्धि नहीं होती। एक उदाहरण है कि एक बच्चा, तो माता पिता दोनों डॉक्टर है, तो वो बच्चा का बड़ा अवसर है डॉक्टर होना, क्योंकि ऐसे ही वातावरण जन्म लिया है, माता पिता दोनों मामा मामी सब डॉक्टर है, डॉक्टर के परिवार में जन्म लिया है। तो फिर भी उसका वो बच्चा का स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, परीक्षा लेना है, और क्वालिफाइड होने चाहिए डॉक्टर होने के लिए। हाँ, तो इसी प्रकार आपका भाग्य है, आप सभी भक्तों का भाग्य है कि आपकी स्वाभाविक रुचि है कृष्ण भक्ति के लिए, तो फिर भी आपका कुछ करना है। तो खाली हाँ कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलना वो अच्छा है, लेकिन उससे और अच्छा है नियमित रूप से कृष्ण भक्ति साधना करना। साधना का मतलब वो साधन उपाय है। हम यहाँ पर दुखमय जगत में है, दुखमय जगत में है और हम सुखमय जगत जाना चाहते हैं, जिसके बारे में ये वर्णन है, यथत भाषा यथे सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गतवान् अनिवर्तन्ते तद्धाम परम मम। तो क्या होते भगवान का धाम में, क्या हो रहा है गुजरात में, चुनाव की बात हो रहे हैं, वहाँ पर चुनाव की बात नहीं होते। और राजा एक है और रानी एक है, राजा है कृष्णा और रानी राधा रानी, चुनाव का जरूरत नहीं है। चुनाव तो बड़ा मन का उपद्रव है, नहीं बहुत बड़ी बात होते है और एक पार्टी का दूसरा पार्टी का गाली करते है और उससे क्या फायदा है। अच्छा हो एक राजा, तो भगवान का धाम है राजा है भगवान और कोई ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं है, और ऐसे ही समय नष्ट कर लेना पॉलिटिक्स की बात में नहीं है। क्या होते वहाँ डांसिंग, डांसिंग होते क्या होते रासलीला, वो बॉलीवुड अंदाज का डांसिंग नहीं है, रासलीला होते। तो यहाँ पर राधा गिरिधारी है, नहीं आप सब दर्शन किए हैं मंदिर में राधा गिरिधारी का दर्शन। तो कौन है राधा गिरिधारी और कौन कौन है राधा गिरिधारी के साथ? सब गोपियाँ हैं, नंद बाबा भी है, माता यशोदा है। हम अभी नहीं देखते क्योंकि हमारे स्थूल दृष्टि है और भौतिक दृष्टि है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि मिल के हम केवल राधा और कृष्ण नहीं देखे, हम पूरा आध्यात्मिक जगत का दर्शन करेंगे। तो ये भगवद गीता है भगवान कृष्ण का आमंत्रण। जैसे वो शादी के लिए और वेडिंग का देना है नहीं आमंत्रण, तो ये भगवद गीता है भगवान कृष्ण का आमंत्रण। तो मेरा दाम आ जाओ, तो एक बार जाके वापस नहीं आना। अब सब मंदिर में दर्शन किया, दर्शन किया नहीं, वास्तविक दर्शन ऐसे ही कि यदि आप एक बार दर्शन करेंगे कभी भी घर वापस नहीं जाएंगे, वही वास्तविक दर्शन है। जैसे एक बार हम भगवान के धाम जाते हैं हम यहाँ वापस नहीं आते, वापस आना क्या क्या जरूरत है? भगवान का धाम में कृष्ण भगवान की दिव्या लीला सदैव चलते रहते, वहाँ पर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि कोई उद्योग नहीं है, बालाब उद्योग तो नहीं है, किसी प्रकार का उद्योग नहीं, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, किसी प्रकार का कष्ट चिंता कुछ भी नहीं है, क्या है पूरा प्रेम, प्रेम का वातावरण है और वो प्रेम का केंद्र बिंदु है राधा और कृष्ण। तो अगर ऐसे स्थिति मिलते तो क्यों यहाँ वापस आए, कोई वापस नहीं आएंगे। जैसे सुना था कि आप शायद आप सब मालूम है कि बिहार यूपी से ओ बहुत सारे लोग यहाँ गुजरात आते हैं नहीं काम करने के लिए, नौकरी ऑटो चलाना ऐसे, और यहाँ आके वापस नहीं जाना नहीं चाहते। अच्छा लगता है यहाँ पर, लगता है अच्छा कि यहाँ के लोग अच्छा है और ऐसे जैसे बिहार यूपी में तो हर एक काम में हर एक बातें में कुछ झगड़ा होते, यहाँ पर थोड़ा शांति होते, लोग अच्छा लगते हैं, तो वापस जाना नहीं चाहते। कभी कभी जाना है ऐसे कुछ शादी हो ऐसे तो इसी प्रकार तो यदि हम भगवान के धाम जाएंगे तो वापस आने की इच्छा नहीं रहेगी, वापस आने किस लिए? तो वास्तविक दर्शन है वो दर्शन जिससे ऐसा अनुभव होते कि हाँ अभी पहुंच गया। बहुत बहुत जन्मों के पश्चात संसार का जंगल में भ्रमण करने के पश्चात अभी पहुंच गए राधा कृष्ण के चरण में। वो चीज जो मैं बहुत जन्मों में बहुत संघर्ष में खोज किया अभी प्राप्त किया है। हम क्या कहते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। हम बार बार जन्म लेते, बार बार मृत्यु प्राप्त होते, अभी मानव श्रेय प्राप्त किया है और उसके पहले कितने 84 लाख जीव जाति है, तो उसके पहले हम क्या ऊंट का श्रेय में था या बिल्ली या देव या राक्षस? हम बहुत जन्म लिए है, बहुत प्रकार के श्रेय धारण किए हैं। तो हर एक जीवन में हम खोजते, क्या खोजते? सुख नहीं मिलते। हम प्रयास करते हैं ऊंट का शरीर में सुख प्राप्त करने, तो उसी शरीर में कुछ भी सुख, उस शरीर में भी सुख होता है। खाना का सुख, क्या खाते ऊंट, उसको क्या बोलते है? नीम नहीं, नहीं वो काटा काट, अच्छा। और उसका खाने से उसका जीभ से खून निकलते, खुद का खून का, अच्छा है, अच्छा लगता है। वो किस प्रकार का सुख है? लेकिन वो जीव जो कृष्ण को भूल के, कृष्ण भूल के ये संसार में आया है, तो ऐसी स्थिति में सूख जैसे लगते। और सुआ उसका खाना क्या है? हाँ, आपका खाना का एक दिन के बाद वो खाते, उसका परिमाण होगा, परिणाम होगा। हाँ, आपका शरीर फैक्ट्री जैसे है, आप भोजन लेते और एक दिन के बाद वो स्पेशल पैकेजिंग सुआ का खाना है, माओ जो है, बहुत अच्छा लगता है। वो क्या है? वो जीव जो जिनका स्वभाव है सच्चिदानंदमय है, तो इतना गहरा अज्ञान में गिल गया है कि सोचते कि ये माल ओ क्या दम, ऐसा अच्छा लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम हैं, हम सुख का शरीर मिल के हम सोचते कि सुख है माल खाने का, वो ऊंट का शरीर में तो तेजी धूप में बहुत भारी वाहन ले जाना ठीक है, यही सुख है। एक दो दिन के बाद कुछ जाल फिरते, यही सुख है। तो वो चीज जो हम बहुत 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 जन्मों के पश्चात खोज करके नहीं मिला, अभी मिल गए हैं श्री श्री राधा गिरिधारी के चरण में। तो घर वापस जाना नहीं है, हमें घर ही ना जाइब बने प्रवेशीब ओलीला रसरथ रे। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि अभी राधा कृष्ण कि लीला में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त किया है, तो घर वापस नहीं जाऊंगा। तो ऐसा है कि वापस जाना है घर, लेकिन मन यहाँ रखना है। कृष्ण भगवान का एक नाम है मनहा, मन जो चित्त चोरी करते, मन जो हरण करते। तो भक्तों जो इस दुनिया में रहते हैं, तो साधारण व्यक्ति जैसे ही काम करते, कोई कोई है प्रोफेसर, कोई कोई है गृहिणी, कोई कोई है कंपनी में नौकरी करते, ऐसे है। तो वो सब करते हैं, लेकिन उनके मन श्री श्री राधा गिरिधारी के चरण में रहता है। ऐसा होना चाहिए। तो वो कैसे संभव है, कैसे संभव है? वो कृष्ण भक्ति साधना करने से। ये साधन शब्द इस तात्पर्य में 3-4 बार आते हैं। साधना करना चाहिए। परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि है यद्गत बान अनिवर्तन्ते तद् धाम परम नमः। भगवान का धाम जानो, वहाँ से लौट कर नहीं आना। तो कैसे संभव है? हमारे मन में क्या है? बुद्धि का शक्ति बहुत है, नहीं काम है, क्रोध है, लोभ है, वो सब है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर हमको सलाह देते हैं, भजरे भजरे अमर मन अति मंद, भज ब्रज वने राधा कृष्ण चरण अरविंद, भजन बिना गति नहीं रहे। मन को उपदेश देते, भजरे भजरे अमर मन अति मंद। मन क्या है? हम बुद्धि से समझते कि हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है राधा कृष्ण चरण सेवा, और कुछ नहीं। लेकिन मन, मन से हम दूसरे प्रकार का संदेश मिलते, नहीं नहीं ऐसा नहीं करे, भौतिक जगत का भोगना चाहिए। तो मन बहुत खराब है। तो मन कैसे शुद्ध करवाना, क्या करना है? भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरण अरविंद, भजन बिना गति नहीं रे। भजन करना चाहिए। भजन साधन मतलब साधना, कृष्ण भक्ति साधना। वो साधना क्या है? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो साधना उपाय बहुत सरल है और सरस है। सरल है और सरस है, सरल है और अच्छा है। वो क्या है? चैतन्य महाप्रभु हमको कौन से उपाय दिया है? आप सब मालूम है, नहीं बताए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। सरल है, नहीं कुछ कठिनाई था ऐसे कहने, और सरस भी है, नहीं सरल है। मुंह खुलना और ऐसे कहना सरल है, थोड़ा कष्ट होते है फिर भी। वो कष्ट क्या है कि मुंह से हम हरे कृष्ण बोलते हैं और मन से अलग संदेश आते है। या हम हरे कृष्ण बोलते हैं और मंदिर में और बाहर जाते हैं और सब भौतिक आकर्षणों से आकर्षित होते। तो क्या करना चाहिए? तो मंदिर के बाहर नहीं जाना, मंदिर के अंदर में भी माया का प्रभाव रह सकते, वो भी है। ऐसा हो सकता है कि हम मंदिर में है और भगवान राधा गिरिधारी के सामने है, लेकिन मन एकदम माया में है, वो भी संभव है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वो साधना पथ है। हरे कृष्णा जाप और कीर्तन करना है और बहुत कुछ करना है जिसमें कुछ भी कठिन नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है साधु का संग में रहना, साधु संग करना चाहिए क्योंकि साधु संग में हम प्रेरणा मिलते हैं और असाध संग में हम दूसरे प्रकार विपरीत प्रकार की प्रेरणा मिलती है। लोग जो ऐसे शराब पीने वाले हैं तो ऐसे संग में यदि हम रहेंगे तो शराब पियो क्या, हम सब पीते हैं, तुम नहीं पीते हो क्यों, तो बाबा हमको बताते हैं, तो फिर हाँ ठीक है मैं भी पी लूँगा। हाँ तो साधु संग में हम प्रेरणा मिलेगी हरे कृष्णा कीर्तन करने के लिए, कृष्ण भक्ति करने के लिए, तो साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। और चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद की बहुत प्रकाशित भक्ति ग्रंथ है ये भगवद गीता, यथारूप तेनमूल रूपे है। तो ये भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने से तो मन स्थिर हो जाते, हम पूरा अस्वस्थ होते कि कृष्ण भक्ति करने के अलावा जीवन में किसी अर्थ नहीं है, यही जीवन का अर्थ है कृष्ण भक्ति करना। और कृष्ण भक्ति का ज्ञान जो भगवद गीता में है वो प्रवेश का ज्ञान, वो प्राथमिक ज्ञान है। भगवद गीता में वो तत्व ज्ञान जो है वो ज़्यादा सरल नहीं है, वो तो भक्तों के मार्गदर्शन से समझना चाहिए। तो ये प्राथमिक ज्ञान है और ये भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने हमें श्रीमद् भागवत का ज्ञान में प्रवेश करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद हमको ये सब साहित्यिक प्रदान किया है जिससे हम अति स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं जीवन का क्या उद्देश्य है, कैसे हम 84 लाख जीव जाति में नाना प्रकार का दुख मिलते हैं, और जिससे हम समझ सकते हैं कि न तद्भासाय थे सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यही भौतिक जगत हमारा आलय नहीं है, हमारा रहने का स्थान है भगवान के चरण में, गोलोक धाम में, हमें वहाँ जाना है। तो साधना भक्ति में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें के नियमित पाठ करना और श्रवण करना, श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति में 9 मुख्य विधि है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रथम है श्रवण, श्रवण करना, जैसे आप सब श्रवण करते हैं, मैं भी श्रवण करता हूँ, खुद की बात श्रवण करता हूँ, खुद की बात वो खुद की बात नहीं है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं खुद की बात नहीं है, ये भगवान का वचन जो हम परंपरा में से प्राप्त किया है श्रील प्रभुपाद का श्रीमुख से सुना था, और वो ही वचन मैं बोलता हूँ, ये मेरा मन से कुछ काल्पनिक वचन नहीं है, मैं जो बोलता हूँ अभी वो भगवान कृष्ण जो गीता में बोलते हैं उससे अभिन्न है, एक ही ज्ञान है, मेरा वचन नहीं है, मैं खाली ऐसे दूत हूँ वो ज्ञान आपको पहुँचाने के लिए। तो श्रवण करना बहुत जरूरी है, Shravan, Kirtan, Nam Jap karna hai. Sab, aap sab mala karte nahi? Sab mala karte? To yehi upay hai. Phir bhi bhajan ka pat mein kuch dikkat hote, antaray hote. Jaise kabhi kabhi bahut dafe bhakton puchte ki main mala karta hoon lekin man pura jagat nahi chalte, mujhe kya karna hai? Bahut dafe bhakt humse puchte, to kya karna hai iske bare mein? Gita mein Bhagwan Krishna kehte hain, yato yato nischalati manas chanchalam astiram tatastato niyamyaitad Nayamatma Vashangdayat. To ye abhyas karna chahiye. To dhyan mein, ye Hare Krishna mantra jap karna ek abhyas jaisa hai. Ek dhyan jaisa hai. Aur hum abhyas karte hain. Hare Krishna mantra. To Hare Krishna mantra to dhyan se karna chahiye. Lekin man bar bar वो शब्द से निकलते हैं, तो हमें क्या करना है? तो बार बार वापस लेना है, वापस लेना है. और इसी प्रकार इसी अभ्यास से मन तो आत्मवश में आते हैं. तो हम मुंह से हरे कृष्ण बोलते हैं और मन चलते बाहर, तो वापस लाना है, वापस लाना है. यही अभ्यास है, अभ्यास है, अभ्यास अभ्यास करना चाहिए. और ऐसे साधारण प्रश्न है कि हम गीता श्रीमद् भागवत हम पढ़ते याद नहीं रहते, वो स्वाभाविक है. कलयुग में कलयुग के दो मुख्य लक्षण है कि लोग की बुद्धि कम होते हैं और स्मृति शक्ति कम होते. तो हम गीता भागवत पढ़ते हैं ऐसे जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते वैसे नहीं है कि सबका याद करना है फिर परीक्षा देना है, ऐसा नहीं. हम गीता और भागवत का अध्ययन करते किस लिए? आत्मशुद्धि के लिए, जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे. यदि हम गीता और भागवत का अध्ययन करेंगे भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे. श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम करते और जिससे हम वो ज्ञान मिलेंगे, जिससे हम समझ सकते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है और मैं उनका दास हूँ. ये श्लोक न थत भाषा थे सूर्यो न शशंको. इसके बाद अगला श्लोक है ममायवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मम षष्ठानींद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति. भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब जीव मेरे अंश है, सनातन अंश. और जो भौतिक जगत में है सब बद्ध जीव, तो मन और सभी इंद्रियों लेकर संघर्ष करते भौतिक संसार में. तो ये सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिससे हमारा जीवन सन्मार्ग में चला सकते. इसी प्रकार इस उद्देश्य से हमें शास्त्र अध्ययन करने. और हर एक शब्द जो है, देखिए एक पेज में कितने सारे शब्द है, तो हम सब तो याद नहीं करेंगे. लेकिन मुख्य संदेश जो है, मुख्य वाणी जो है, हम बार बार पढ़ने से हम याद करेंगे और मन में स्थिर हो जाएगा. तो ऐसे है भक्ति जीवन एक दृष्टिकोण से बहुत सरल है. कठोर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली हरे कृष्ण बोलना है, वो बहुत सरल है. और कृष्ण प्रसाद लेना है वो भी बहुत सारा है। और दूसरा दृष्टिकोण से कठिन है क्योंकि मन तो बड़ा शैतान जैसे रहते है, परंतु यही विश्वास होना चाहिए कि यदि हम प्रयास करेंगे भगवान कृष्ण जो हमारे परम बंधु है हमको सहायता करेंगे। भगवान कृष्ण ये भौतिक जगत में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। भगवद गीता कहते हैं, व्यास के रूप में हमको श्रीमद् भागवत देते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और इनके प्रिय भक्त श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में भेज देते हैं। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण हमको उद्धार करने चाहते हैं, और यदि हम पूरा दिल से प्रयास करेंगे, हम असहाय होते हुए भी, मतलब हम खुद का प्रयास से हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, तो भगवान कृष्ण जो हमारे परम बंधु है तो हमको सहायता करेंगे। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगान्तं येन माम उपयान्ति ते। हम नहीं जानते कैसे भगवान का धाम जाना, तो भगवान कृष्ण हमको यथार्थ बुद्धि और ज्ञान देंगे, तो वो विश्वास होना चाहिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए भक्ति में पूरी श्रद्धा से, और यदि हम वैसे करेंगे तो भगवान कृष्ण हमको सहायता करें। कैसे भगवान सहायता करते हैं, तो हमको भगवद गीता ज्ञान देते हैं, हमको भक्त संग देते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु दास यहाँ पर है, और आपको ज़्यादा आपको मार्गदर्शन देते हैं, फिर जो इनसे मार्गदर्शन लेते हैं तो वो प्रेरणा मिलके दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं। ये सब भगवान कृष्ण की कृपा है। भगवान की कृष्ण की कृपा क्या है, हम कैसे पहचान कर सकते हैं भगवान कृष्ण की कृपा? ऐसे है कि भगवान कृष्ण यहाँ है राधा गिरिधारी के रूप में और भक्तों के रूप में है। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण हमको प्रचुर कृपा देते हैं, और हमको वो ही कृपा, हमें क्या करना है, खाली वो कृपा ग्रहण करना और कुछ नहीं, ग्रहण करना चाहिए, और उससे क्या होगा, हमें भगवान के धाम जाएंगे। सरल और सरस भी है। हरे कृष्णा।